सिमोन की यश गाथा अध्याय 14। राजा देमेत्रियस 172वें वर्ष अपनी सेना एकत्रित कर मेदिया गया, जिससे वो त्रिफोन से लड़ने में वहां से सहायता प्राप्त करे। जब फारस और मेदिया के राजा अर्साकेस ने यह सुना कि देमेत्रियस उसके देश के भीतर आ गया है, तो उसने अपना एक सेनापति भेजा जिससे वो उसे जीवित ही पकड़ लाए। वो चल पड़ा और उसने देमेत्रियस की सेना को पराजित कर देमेत्रियस को बंदी बनाया और उसे अर्साकेस के सामने ले आया। उसने उसे बंदी गृह में डाल दिया। सिमोन के शासनकाल में यूदा भर में शांति का साम्राज्य था। वो लोगों के कल्याण के लिए सक्रिय रहता था। जनता उसके जीवन भर उसके अधिकार और वैभव से संतुष्ट थी। उसने याफा को अधिकार में कर अपने राज्य का विस्तार किया। उसे बंदरगाह बनाया और समुद्र के द्वीपों का मार्ग खोला। उसने अपने राष्ट्र की सीमाओं का विस्तार किया और अपने देश का दृढ़तापूर्वक शासन किया। उसने बहुत से यहूदी युद्ध बंदी विदेश से एकत्र किए। उसने गेजेर, बेतसूर और गढ़ पर अधिकार किया। उसने गढ़ का शुद्धिकरण कराया। ऐसा कोई नहीं रह गया जो उसका सामना करे। सब शांतिपूर्वक अपने खेत जोतते थे, भूमि अपनी फसल उगाती थी, मैदान के पेड़ अपने फल देते थे। चौकों में बैठकर बड़े बूढ़े अपनी समृद्धि की ही चर्चा किया करते थे। नवयुवक भड़कीले आभूषण और युद्ध के वस्त्र पहनते थे। वो नगरों को खाद्य सामग्री देता और उनकी किलाबंदी करता था। इस प्रकार उसके महिमामय नाम की चर्चा पृथ्वी के सीमांतों तक होती थी। वो देश में शांति बनाए रखता था और इज़राइल में बड़ा आनंद था। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दाखलता और अंजीर के पेड़ के नीचे बैठता था। ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें डर दिखाए। ऐसा कोई नहीं था जो उनके देश पर आक्रमण करे। उन दिनों राजाओं को रौंदा जाता था। वह अपनी प्रजा के सब दीनहीन लोगों की संभाल करता था। वो संहिता के लिए उत्साह दिखाता और सब विधर्मियों एवं दुष्टों का दमन करता था। उसने मंदिर की शोभा बढ़ाई और उसे बहुसंख्यक पात्रों से समृद्ध किया। स्पार्ता और रोम के साथ यहूदियों की संधि। रोम और स्पार्ता के लोग भी योनातान की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत दुखी हुए। जब उन्होंने ये सुना कि उसका भाई सिमोन उसकी जगह प्रधान याजक बन गया है और देश तथा उसके नगरों का शासक है, तो उन्होंने उसके भाई यूदा और योनातान के साथ मित्रता और संधि का जो संबंध स्थापित किया था, उसे दोहराने के लिए उसके पास कांसे के पत्थरों पर लिखा हुआ पत्र भेजा। उसे यरूशलेम में सभा के सामने सुनाया गया। स्पार्तावासियों के पत्र की प्रतिलिपि इस प्रकार है। प्रधान याजक सिमोन, नेताओं, याजकों और अन्य यहूदियों, अपने भाइयों को स्पार्ता के पदाधिकारियों और नगर का नमस्कार। आप लोगों ने हमारे यहां जो दूत भेजे, उन्होंने हमें आपके यश और आपकी प्रतिष्ठा के विषय में बताया। उनके आगमन से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हमें जो बताया, उसे हमने परिषद के कार्य विवरण में इस प्रकार लिपिबद्ध किया। अंतियोख के पुत्र नुमेनियस और यासोन के पुत्र अंतिपातेर हमारे यहां यहूदियों के दूतों के रूप में इस उद्देश्य से आए कि वे हमारे साथ मित्रता का संबंध फिर से स्थापित करें। जनता ने उन दूतों का सम्मान के साथ स्वागत करने और उनके वक्तव्य की प्रतिलिपि राज्य के अभिलेखागार में रखने का निश्चय किया, जिससे स्पार्टा के लोगों को उसकी याद कायम रहे। उसकी एक प्रतिलिपि प्रधान याजक सिमोन को भेजी गई। इसके बाद सिमोन ने नुमेनियस को 570 किलो सोने की एक बड़ी सी ढाल के साथ रोम भेजा, जिससे रोमियों के साथ संधि स्थायी हो जाए। सिमोन की कीर्ति विषयक स्मृति पत्र। जब लोगों ने इस विषय में सुना तो वे कहने लगे, हम सिमोन और उनके पुत्रों के प्रति अपना आभार कैसे प्रकट करें? वो स्वयं एक वीर योद्धा है। उनके भाई और उनके सारे कुटुंबी हमारी ओर से इज़राइल के शत्रुओं के विरुद्ध लड़ते रहे और उन्होंने हमें स्वतंत्रता प्रदान की। उन्होंने कांसे की पाटियों पर एक अभिलेख अंकित किया और उसे सियोन पर्वत के स्तंभों पर लगाया। उस अभिलेख की प्रतिलिपि इस प्रकार है, 172वें वर्ष के एलूल मास के 18वें दिन परम श्रद्धे प्रधान याजक सिमोन के तीसरे वर्ष याजकों, लोगों, राष्ट्र के शासकों और देश के नेताओं ने मंदिर के प्रांगण की सभा में निम्नलिखित बातों पर विचार किया। जब देश भर में लड़ाइयां चल रही थी, तब सिमोन ने, जो मत्तथ्या के पुत्र और यहोयारीब के वंशज हैं, और उनके भाइयों ने मंदिर और संहिता की रक्षा के लिए अपने को खतरे में डालकर अपने राष्ट्र के शत्रुओं का सामना किया और इस प्रकार उन्होंने अपना राष्ट्र गौरवमय बनाया। योनातान ने राष्ट्र में एकता की स्थापना की और वो उनके प्रधान याजक बन गए। जब वो अपने पूर्वजों के पास दफनाए गए तो यहूदियों के शत्रु घुसकर उनका देश लूटना और मंदिर पर अधिकार करना चाहते थे। उस समय सिमोन अपने राष्ट्र के लिए लड़ने को उठ खड़े हुए। उन्होंने राष्ट्रीय सेना की सज्जा और सैनिकों के वेतन के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का एक बड़ा भाग खर्च किया। उन्होंने यूदा के नगर किलाबंद किए और सीमा पर अवस्थित बेतसूर को भी, जहां पहले शत्रुओं का शस्त्रगार था, और वहां एक रक्षक सेना रखी। उन्होंने समुद्र तट पर अवस्थित याफा को किलाबंद किया और गेजेर को भी, जो आजोत के पास है और जहां पहले शत्रु निवास करते थे। उन्होंने वहां यहूदियों को बसाया और उनकी जीविका का पूरा प्रबंध किया। लोगों ने देखा कि सिमोन ईमानदार है और अपने राष्ट्र को गौरवशाली बनाना चाहते थे। उन्होंने सिमोन को अपना शासक और प्रधान याजक नियुक्त किया, क्योंकि वो ये सब किया करते, अपनी जाति को न्याय दिलाते, उसके प्रति ईमानदार थे और वो हर तरह अपने लोगों की उन्नति करना चाहते थे। सिमोन उस समय गैर यहूदियों को देश से निकालने में सफल हुए। उन लोगों को जिन्होंने यरूशलेम के दाऊद नगर में अपने लिए एक गढ़ बनवाया था, जहां से वे छापा मारा करते, मंदिर के आसपास का क्षेत्र दूषित करते और मंदिर की पवित्रता को बड़ी हानि पहुंचाते थे, उन्होंने वहां यहूदी सैनिक रखे और देश तथा नगर की सुरक्षा के लिए उसे सुदृढ़ बनाया तथा यरूशलेम की चार दीवारी और ऊंची कराई। तब राजा डेमेट्रियस ने प्रधान याजक के पद पर उनकी नियुक्ति की पुष्टि की, उन्हें अपना मित्र बनाया और बड़ा सम्मान दिया। उसने सुन रखा था कि रोमी यहूदियों को अपने संधिबद्ध मित्र और भाई मानते हैं, और सीमोन के राजदूतों का वहां बड़े आदर से स्वागत किया था। ये भी कि यहूदी और याजक इस बात पर सहमत हैं कि जब तक कोई निष्ठावान नबी नहीं होगा, तब तक सीमोन लोगों के शासक और प्रधान याजक रहेंगे। उसने ये भी सुना था कि वही उनके सेनापति और मंदिर के प्रबंधक हैं, उनके सब निर्माण कार्यों, प्रदेश, शस्त्र भंडार और गढ़ों के अध्यक्ष हैं। सभी उनकी बात मानते हैं। देश भर की राजाज्ञाएं उनके नाम पर निकाली जाती हैं और वो बैंगनी वस्त्र और सोने के आभूषण पहनते हैं। जनता और याजकों में किसी को अधिकार नहीं कि वो इस व्यवस्था में परिवर्तन करे या सीमोन के आदेशों का उल्लंघन करे। उनकी अनुमति के बिना देश में सभा का आयोजन करे और बैंगनी वस्त्र या सोने का आभूषण पहने। जो इस व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन करेगा या उनमें कोई परिवर्तन करेगा, वो दोषी माना जाएगा। सभी लोग सीमोन को यह अधिकार प्रदान करने के पक्ष में थे। सीमोन ने सहमति प्रकट की और उसने प्रधान याजक, सेनापति, यहूदियों और याजकों का अध्यक्ष और सबों का शासक बनना स्वीकार किया। यह भी निश्चित किया गया कि इन बातों को कांसे के पत्थरों पर लिखा जाए और उन्हें मंदिर के किसी सार्वजनिक स्थान पर लगाया जाए। उनकी एक प्रतिलिपि सीमोन और उसके वंशजों के लिए कोष में रख दी जाए।